आज हमारे तृतीय दिन में परमात्मा शक्तियों से नारी के शक्ति स्वरूप द्वारा महापरिवर्तन, इस महाकॉन्फ्रेंस के अंदर आज का टॉपिक है सुखी पारिवारिक जीवन के लिए मूल्य। स्ट्रेस एंड एंगर मैनेजमेंट, ये टॉपिक पर आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी आपको इस बारे में समझाएंगे। वास्तव में जीवन के अंदर तनाव ये हमेशा रहता ही है। 21वीं सदी में हर इंसान तनाव से ग्रस्त है और कोई न कोई छोटी न छोटी बात में मनुष्य को तनाव होता है। लेकिन आज ये महिलाओं के कार्यक्रम में नारी तो एक महान शक्ति है, उसमें एक परिवर्तन करने की शक्ति है। नारी के लिए मैं एक कहूंगी, यह दुनिया एक गुलशन है, यह दुनिया एक गुलशन है तो नारी उसकी माली है, नारी उसकी माली है। वह झुक जाए तो सीता है, वह झुक जाए तो सीता है, अड़ जाए तो चंडी और काली है, अड़ जाए तो चंडी और काली है। तो देखिए बहनों, नारी क्या नहीं कर सकती, नारी में इतनी शक्ति है, वह संसार को परिवर्तन कर सकती, तो क्या तनाव को नहीं कर सकती? तनाव जो है उस तनाव को दूर करने के लिए अगर हम अपने जीवन में सद्गुणों को लाते हैं, अच्छे अच्छे गुणों को लाते हैं, तो हमारा तनाव सहज ही मिट जाता। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक जिनसे भी मिलते हैं, जिनसे व्यवहार करते हैं, तो उन सभी के व्यवहार में अगर आप एक छोटी सी बात ध्यान में रखेंगे कि मुझे सभी के गुणों को देखना है, तो आपको तनाव आएगा ही नहीं। हर व्यक्ति के अंदर गुण और अवगुण है, तो उसके गुणों को ही देखना है। देखो, एक व्यक्ति बहुत तनाव में रहता था और उसको हमेशा टेंशन 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 करता रहता था और वह दिन भर सभी के अवगुणों को ही देखता था। एक दिन वो सागर के किनारे गया तो सागर के किनारे पर उसको बहुत ठंडी हवाएं मिल रही थी, सागर को वो देख रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था, आनंद भी आ रहा था। लेकिन उसका संस्कार था सबके अवगुणों को देखना, तो सागर को कहा, है सागर, तू है तो बहुत अच्छा, कितना विशाल, कितना गहरा, लेकिन अगर तेरा पानी खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता था। फिर चलते चलते थोड़े दिनों के बाद एक दिन सुबह सुबह उसने कोयल का आवाज सुना, बहुत कान को मधुर लगा और कोयल को देखते कोयल को कहा, है कोयल, तू कितनी अच्छी गाती है, तेरा आवाज कितना मधुर है, लेकिन बहना तुम काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता था। थोड़े दिनों के बाद वो बगीचे में घूम रहा था तो बगीचे में उसने गुलाब को देखा और गुलाब को देखते मन खुश हो गया। लेकिन गुलाब को जैसे वो तोड़ने गया तो गुलाब को कहा, है गुलाब, तू बहुत अच्छा है, लेकिन तेरे में अगर कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता था। लेकिन गुलाब, कोयल और सागर, इन तीनों ने मिलकर इंसान को कहा कि हे इंसान, तू बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम किसी के अवगुण नहीं देखता तो कितना अच्छा होता था। तो देखिए मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, हमारे जीवन के अंदर तनाव ये रहता ही है। छोटा बच्चे को भी बोलेगी ना, बच्चा तो आया है स्कूल से, खाना खा लो, तो क्या कहता है, मम्मी मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे बहुत तनाव है, बहुत टेंशन है पढ़ाई का। तो ये टेंशन 21वीं सदी में जैसे गिफ्ट में मिला है, लेकिन तनाव कोई तनाव चीज नहीं है, ये तो एक कागज का शेर है। अगर हम अपने जीवन के अंदर ये प्रतिज्ञा कर लें कि मुझे सभी के गुण देखना है, मुझे सभी के अंदर अच्छे सद्गुणों को ढूंढना है, तब मेरा जीवन तनाव मुक्त हो सकता है। क्योंकि आज संसार में हम व्यक्ति, हर व्यक्ति सब चीजों को इकट्ठा करता है। वो सोचता है मेरे घर में टी सेट हो, मेरे घर में सोफा सेट हो, मेरे पहनने के लिए गहनों का सेट हो, लेकिन अगर मन अपसेट हो तो क्या फायदा। तो मन को सेट करना आज हमें सविता दीदी बताएंगे। सविता दीदी के लिए मैं एक सुंदर शेर कहूंगी, क्योंकि सविता दीदी एक महान हस्ती है। वो अपने डॉक्टर, सविता दीदी डॉक्टर होते हुए भी उन्होंने अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा में 40 साल से लगाया और 35 साल से वह ईश्वरीय सेवा में मधुबन पांडव भवन में रहते हैं। महिला विंग के वह हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। 10 साल उन्होंने माउंट अबू के ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवाएं दी हैं। और हमारे प्रकाशमणि दादी जो थे, जो सचमुच प्रकाश थे, ऐसी महान दादी के साथ में उन्होंने 10 साल दादी जी के पर्सनल वो डॉक्टर रहे और दादी जी की दुआएं उन्होंने ली। और सविता दीदी जी अनेक अनेक विदेशों की भी सेवाएं करके आए, अमेरिका, रशिया आदि आदि देशों का उन्होंने भ्रमण करके उन आत्माओं को भी जगाया। सविता दीदी जी के लिए कहूंगी कि सचमुच सविता दीदी, आप बुद्धि में जिनके गणपति का वास है, बुद्धि में जिनके गणपति का वास है, वाणी में जिनके सरस्वती की झंकार है, वाणी में जिनके सरस्वती की झंकार है, दिल में भगवान का वास है, दिल में भगवान का वास है, ऐसी डॉक्टर सविता दीदी आज हम सबके बीच में खास है, आज हम सबके बीच में खास है। मैं बहनों को निवेदन करती हूँ कि बहनें आकर सविता दीदी को बैच पहनाएंगे और उनको गुलदस्ते से उनका स्वागत करेंगे।
ओम शांति। आप सभी ने अभी बहन से सुना कि हमारा जीवन तनाव और क्रोध से आज बिल्कुल, हम कहेंगे कि वो व्यापक रूप ले चुका है, हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। और यहाँ तक कि बच्चे भी आज तनाव से मुक्त नहीं हैं। भले ही हम 21वीं सदी में पहुंचे हैं, बहुत साधन हमें मिले हैं, लेकिन जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं उतना ही तनाव बढ़ गया है। हमारे यहाँ अनेक प्रभाग हैं, आपको बताया गया, ऐसे ही एक मेडिकल विंग है जो लोगों को हेल्थ एजुकेशन देने के लिए स्वास्थ्य मेले लगाते हैं। तो एक ऐसे ही स्वास्थ्य मेला लगाया गया एक शहर में, और उसमें बहुत सारे स्टॉल होते हैं। एक स्टॉल में ये कहा गया कि यहाँ आप अपनी बुराई का दान करें। उसके कहने का मतलब था कि आप यहाँ शराब छोड़ सकते हैं, सिगरेट छोड़ सकते हैं, तंबाकू गुटखा खाते हैं वो छोड़ सकते हैं, जो भी ऐसी कोई कमी है। तो एक माता पिता अपने बच्चे को वो मेला दिखा रहे थे। तो जब वो उस स्टॉल पर पहुंचे तो माँ को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनका बेटा बहुत चॉकलेट खाता था और उसके दांत खराब हो रहा था और उसके दांत खराब हो रहे थे। तो उसने कहा, बेटा तुम अपनी चॉकलेट यहाँ दान कर दो। तो बेटे ने बोला, माँ मुझे सोचने दो, मुझे क्या दान करना है। और एक मिनट के बाद सोचकर बोला, मैं अपनी पढ़ाई दान कर दूं, मुझे पढ़ाई से बहुत टेंशन होती है। तो ये आज बच्चों की स्थिति है, कैरियर के हर मोड़ पर कंपटीशन है, यहाँ तक कि एडमिशन में भी कंपटीशन होता है। और उस बात को लेकर माता पिता को भी तनाव होता है, और कई बार ये देखने में आता है कि बच्चों के एग्जाम्स चल रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ माँ बाप के भी जैसे एग्जाम चल रहे हैं, उतना तनाव में माता पिता भी रहते हैं। तो इसीलिए कहा कि 19वीं सदी आविष्कारों की सदी रही, लेकिन जो 20वीं सदी आई उसे एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कहा गया। वास्तव में तो वो सुख की सदी होनी चाहिए थी, लेकिन वो एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हो गई। और वर्तमान में हम 21वीं सदी में हैं। तो मेडिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर यही हमारी जीवन शैली रही जो अभी वर्तमान में है, तो ये 21वीं सदी एज ऑफ पैनिक एंड डिप्रेशन हो जाएगी। डिप्रेशन के केसेस भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और इसीलिए तनाव के बारे में सभी अध्ययन 20वीं सदी में किए गए। साइंटिस्ट हेंसले ने काफी कार्य किया इसके ऊपर, और उन्होंने तनाव को परिभाषित किया। तनाव हमें तब होता है जब प्रेशर्स ज्यादा हैं और हमारी कोपिंग एबिलिटी कम है, यानी समस्याएं ज्यादा हैं, परिस्थितियों की मांग हमसे ज्यादा है, लेकिन उसकी तुलना में अगर हमारी सामर्थ्य कम है तो जो हम महसूस करते हैं, इट्स ए काइंड ऑफ पेन, फॉर्म ऑफ पेन दैट कम्स टू टेल मी देयर समथिंग आई नीड टू चेंज, जो मुझे ये बताता है कि मुझे कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। और ये दर्द मुझे ये भी संदेश देता है कि उस परिवर्तन को लाने के लिए मुझे कुछ नया सीखना होगा। अगर हम नया नहीं सीखेंगे तो परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। और आज प्रेशर्स हमारे ऊपर चारों तरफ से आते हैं। भूतकाल में हमारे जीवन में कुछ घटनाएं घटी होती हैं जिनको हम सोचते हैं, और ये देखा जाता है कि जब वो बात या घटना घटी होती है तब वो बहुत छोटी होती है, लेकिन हम उसे बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, तो वो राई का पहाड़ बन जाता है, बड़ा रूप वो लेने लगती है। ये बहुत हल्का है, इसे मैं हाथ में पकड़ती हूँ तो मुझे दर्द नहीं होता है, बहुत हल्का है, मैं इसे पकड़ सकती हूँ, लेकिन इसे ही अगर मैंने 10 घंटे ऐसे ही पकड़े रखा तो क्या होगा, मेरा हाथ दर्द करने लगेगा। और 10 घंटा अगर मैंने इसे पकड़ लिया तो मेरा हाथ सुन्न भी हो सकता है, पैरालाइज भी हो सकता है। तो कितनी देर मैंने इसको पकड़ा उस पर ये निर्भर करेगा। ऐसे ही कोई भी बात को हम मन में पकड़ कर रखते हैं तो वो मन में दर्द देने लगती है। अब कितना समय मैंने उस बात को पकड़ कर रखा उतना ही प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। तो वर्तमान में वो दर्द हम महसूस करते हैं, फिर भविष्य की चिंता होती है बहुत लोगों को, क्या होगा, कैसे होगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा होगा कि नहीं होगा, भविष्य का भय या अनसर्टेनिटी, असुरक्षा, वो भी वर्तमान में हमें दबाव डालती है। और वर्तमान की अपनी समस्याएं होती हैं, और इस तरह से चारों तरफ से प्रेशर्स होते हैं। और ये भी बताया साइंटिस्ट हेंसले ने कि जब हम तनाव की स्थिति में होते हैं तो हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स बनते हैं, और वो हानिकारक हैं, वो हमारे शरीर के लिए एक स्लो पॉइजन का काम करते हैं, जिन्हें हम कैटाकोलामीन्स और स्टेरॉइड्स कहते हैं। इसके ऊपर भी स्टडीज की गई, येल यूनिवर्सिटी एक अमेरिका में है जिसमें स्टूडेंट्स के ऊपर ये अध्ययन किया गया कि तनाव का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उनके व्यक्तित्व के अनुसार उनको दो ग्रुप में बांटा गया। पहले ग्रुप में उन विद्यार्थियों को लिया गया जो स्वभाव से बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे, बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर के थे, धैर्य नहीं रख सकते थे, अपने मन को वो स्थिर नहीं कर पाते थे। और दूसरे ग्रुप में उन स्टूडेंट्स को लिया गया जो इसके विपरीत स्वभाव के थे, शांत स्वभाव के थे, धैर्य रख सकते थे, अपने मन को एकाग्र कर सकते थे। और उनके स्वास्थ्य की जांच की गई तो ये देखा गया कि उस उम्र में दोनों ही ग्रुप का स्वास्थ्य सामान्य था, लेकिन क्योंकि एक अध्ययन था तो हर 10 वर्ष में उनको हेल्थ चेकअप के लिए बुलाया गया। और 50 साल की उम्र तक आते आते ये देखा गया कि जो पहले ग्रुप वाले थे, यानी जो जल्दी तनाव में आ जाते थे, उनमें दूसरे ग्रुप की तुलना में 5 गुना ज्यादा बीमारियां हो चुकी थी। मतलब अगर दूसरे ग्रुप में 5 लोगों को हुई तो पहले ग्रुप में कितने लोगों को हुई? 25 लोगों को। और ये भी देखा गया कि पहले ग्रुप में दूसरे ग्रुप की तुलना में मृत्यु की संभावना भी 5 गुना ज्यादा थी। तो इसीलिए हमें अपने तनाव को कम करने की जरूरत है, या हमें अपने को तनाव से मुक्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। और सिर्फ तनाव की बात नहीं, क्रोध के भी वही प्रभाव होते हैं, क्योंकि क्रोध भी तनाव का एक रूप है। और उस स्थिति में भी हमारे शरीर में वही केमिकल्स बनते हैं, तो आप देख रहे हैं हमारी हेल्थ पर क्या इफेक्ट्स आते हैं। सबसे पहला असर हमारे दिल पर होता है, चाहे हम क्रोध करते हैं चाहे हम तनाव में आते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और अगर हृदय की धमनियों में कहीं ब्लॉकेजेस हैं, आजकल देखने में आता है कि 40 साल की उम्र तक आते आते हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेजेस शुरू हो जाते हैं। और जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर में जो केमिकल्स बनते हैं वो हृदय की नलियों को सिकोड़ देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं वो, जिससे हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन कम मिलती है। और अगर ब्लॉकेजेस हैं और वो ज्यादा हैं तो फिर एंजाइना हो सकता है, जिन्हें हम सीने का दर्द या हृदय में होने वाले दर्द के नाम से जानते हैं। और अगर 100% तक ब्लॉकेजेस हैं तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो ये देखा गया कि हृदय रोगों का एक बड़ा कारण स्ट्रेस है। और भी कारणों से हृदय रोग होते हैं, लेकिन एक मेजर रीजन जो है वो स्ट्रेस है। दूसरा इफेक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर आता है, उसमें एसिडिटी बनती है, अल्सर्स हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है। नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट आता है, उसकी वजह से बहुत अधिक पसीना आना, हाथ पांव कांपना, मुंह सूखना, ठीक से बातचीत नहीं कर पाना, सिर में दर्द होना, नींद नहीं आना, या बहुत थकान बने रहना, शरीर में दर्द होना। और मस्तिष्क पर असर होता है, उसके कारण मस्तिष्क की कार्य क्षमता प्रभावित होती है, यानी हमारी एकाग्रता कम हो जाती है, निर्णय शक्ति पर फर्क आता है, स्मरण शक्ति कम होने लगती है, और व्यक्ति डिप्रेशन में भी जा सकता है। जैसे आपको बताया कि डिप्रेशन के केसेस आज बढ़ते जा रहे हैं, और अकेले भारत में 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन की दवाइयां लेते हैं। फिर लोग तनाव कम करने के लिए, खासकर जो मेल मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? व्यसनों का सहारा लेते हैं। लेकिन वो व्यसन उनके तनाव को कम करता है या नहीं करता, लेकिन परिवार के तनाव को जरूर बढ़ा देता है। उनकी पत्नी तनाव में आ जाती है, बच्चे तनाव में आ जाते हैं, और फैमिली मेंबर्स भी। डायबिटीज और आर्थराइटिस, ये भी साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं, और स्ट्रेस से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है। उसकी वजह से जो वायुमंडल में इन्फेक्शन फैलते हैं उसे हम ज्यादा कैच कर सकते हैं और यही स्थिति क्रोध के समय भी बनती है। तो इतने स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव तनाव के होते हैं, लेकिन ये सभी पर एक जैसे नहीं होते हैं। जिसका जो सिस्टम सेंसिटिव होता है, हेरिडिटरी से हरेक का अलग अलग सिस्टम सेंसिटिव होता है। किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम सेंसिटिव होता है तो उनके ज्यादा लक्षण पाचन तंत्र के लक्षणों के रूप में आएंगे। जिसके हृदय में कमजोरी होती है उनके ज्यादा लक्षण हृदय की बीमारियों के रूप में आते हैं। फिर ये देखा गया कि तनाव के कारण क्या हैं। अगर हम ये जानने का प्रयास करते हैं तो पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, कार्य क्षेत्र की समस्याएं हो सकती हैं, हमारे खुद के व्यक्तित्व की समस्याएं हो सकती हैं, बहुत से कारण हैं, समाज की, देश की, पूरे विश्व की कोई भी समस्याएं हमें प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन एक सर्वे में ये पूछा गया लोगों से आपके तनाव का कारण क्या है, तो 80% लोगों ने कहा दूसरों के कारण उन्हें तनाव होता है। दूसरों के कारण होता है, उसमें जैसे एक सास थी, उसको पूछा गया, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, तो उसको पूछा आपका ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो जाता है, तो उसने क्या कहा होगा आप सब समझ सकते हैं, क्या कहा, हाँ मेरी बहू के कारण, मेरी बहू जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं करती है, सब कुछ अपने मन से करना चाहती है, फिर और ही मेरा सामना करती है, इसलिए मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और ऐसे ही बहू को सिर दर्द रहता था, उसको पूछा गया आपका सिर दर्द क्यों हो जाता है, तो उसने क्या कहा, मेरी सास के कारण, क्योंकि वो मेरे हर काम में कोई ना कोई कमी निकालती है, गलती निकालती है, और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मुझे सिर दर्द हो जाता है। ऐसे ही माँ बाप को पूछा गया तो उन्होंने कहा बच्चों के कारण, और जब बच्चों को पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, माँ बाप के कारण। हाँ, ऐसे ही वर्क प्लेस पर पूछा गया तो मैनेजमेंट को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आजकल वर्कर्स काम नहीं करते हैं लेकिन उनकी मांगे बहुत ज्यादा होती हैं, और अगर वो मांगे पूरी नहीं करो तो वो यूनियंस बनाते हैं, हड़ताल करते हैं, सचमुच काम करवाना आजकल बहुत मुश्किल है। और जब वर्कर्स को पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, मैनेजमेंट के कारण हमें तनाव होता है, क्योंकि मैनेजमेंट हमसे काम तो बहुत लेती है लेकिन जो सुविधाएं हमें देनी चाहिए, जो वेतन हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो हरेक की उंगली किसकी ओर है, दूसरे की ओर है। तो अगर हम एक उंगली दूसरे की ओर करते हैं तो तीन उंगली हमारे खुद की ओर है। अगर एक कमी दूसरे में है, सामने वाले में है, तो पहले तीन कमी किसमें है, तो पहले किसको परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं जो कर रही हूँ, मैं जो सोच रही हूँ वो सही है, दूसरे को बदल जाना चाहिए। हाँ, सास हमेशा सोचेगी मेरी बहू को मेरे अनुसार चलना चाहिए, मैं अनुभवी हूँ, और बहू क्या सोचती है, मेरे सास को आजकल के जमाने को समझना चाहिए। हाँ, ऐसे ही मैनेजमेंट सोचेगा वर्कर्स के लिए, वर्कर्स आते ही है ना काम करने के लिए, काम तो करना ही चाहिए। तो हमेशा हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, ना हम बदलते हैं ना वो बदलते हैं, हमारी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है सेल्फ चेंज लीड्स टू वर्ल्ड चेंज। हाँ, दो दिन से आप ये सुन रहे हैं कि सबसे पहला परिवर्तन कहाँ से शुरू करना है, स्वयं से शुरू करना है। एक बार ऐसे ही एक हस्बैंड वाइफ ट्रांसफर होकर के दूसरे शहर में गए और वहां पर उन्होंने अपार्टमेंट में घर लिया। अब अपार्टमेंट में कई बार फ्लैट आमने सामने होते हैं, तो ऐसे ही उनका घर था और ये अपनी बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे और सामने वाले फ्लैट की जो लेडी थी वो कपड़े सुखा रही थी। तो इस बहन ने देखा कि कपड़े साफ नहीं धुले हुए हैं, तो उसने अपने पति को सुनाया कि देखो कैसे कपड़े धोए हैं, इनको कपड़े धोने भी नहीं आते हैं। फिर ऐसे ही दूसरे दिन भी जब वो चाय पी रहे थे वो कपड़े सुखा रही थी और आज भी उसे लगा कपड़े साफ नहीं धुले हुए हैं, तो उसने वही बात फिर से अपने पति को कही, तो पति ने चुपचाप सुना, कुछ कहा नहीं। तीसरे दिन फिर ऐसा हुआ, लेकिन आज उसने देखा कि कपड़े बहुत साफ धुले हुए हैं, जब वो कपड़े सुखा रही थी तो उसने वही बात फिर पति को कही कि आज तो इसने बहुत साफ कपड़े धोए हैं। तो पति ने कहा आज मैंने बालकनी का शीशा साफ कर दिया है। अब कमी कहाँ थी और देख कहाँ रहे थे। तो ज्यादातर हम अपनी नहीं दूसरों की कमियां देखते रहते हैं। अभी जैसे बहन ने सुनाया कि दूसरों के अवगुण देखने की, कमियां देखने की हमें ज्यादा आदत होती है। फिर ये भी देखा गया कि हम ओवर वर्क से, अगर हमें बहुत अधिक कार्य करना पड़ता है तो उससे भी हम तनाव में आ जाते हैं। लेकिन वास्तव में काम व्यक्ति को तनाव पैदा नहीं करता, लेकिन किस भावना से हम काम करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर हम अपने काम को पसंद करते हैं, अपने काम को दिल से करते हैं, रुचि से करते हैं, तो वही काम हमें खुशी देता है। लेकिन जिस काम को हम पसंद नहीं करते और हमसे करवाया जाता है, हम मजबूरी से करते हैं उसे, तो फिर वो काम हमें तनाव पैदा करता है। तो यदि ओवर वर्क है हमारे पास और हमें लगता है इस काम को हम पसंद नहीं करते हैं, तो हम उसे चेंज कर दें। पर हमेशा ये संभव नहीं होता है कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसे हम चेंज कर पाए, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। और अगर हमें करना ही है, देन लर्न टू लव योर वर्क। जो भी हम कर रहे हैं उसे हम प्रेम से करें, और नहीं तो काम को मैनेज करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, अर्जेंट काम है, उसे हम पहले कर लें। लेस इम्पॉर्टेंट है उसे हम बाद में भी कर सकते हैं, लीस इम्पॉर्टेंट है उसे हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं। तो काम को मैनेज करके करेंगे या दूसरों का सहयोग लेकर के भी उसे हम पूरा करेंगे, तो जो काम की अधिकता का तनाव है वो हमें नहीं होगा, तनाव है वो हमें नहीं होगा। फिर हम अपने तनाव को कम करने के लिए जो साधन अपनाते हैं वो सब मनोरंजन के साधन हैं। मनोरंजन के साधन माना हम रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहां जाकर भोजन करेंगे यानी अपनी डाइट को चेंज करेंगे, या हम क्लब्स में जाते हैं, आजकल लाफिंग क्लब्स भी होते हैं बड़े बड़े शहरों में, या हम हॉलीडेज पर चले जाते हैं, या फिर सिनेमा देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, कुछ लोग ड्रग्स भी लेते हैं यानी नींद की गोली वगैरह भी खा लेते हैं, या और क्या करते हैं आप भी सुना सकते हैं हमें, क्योंकि आप सभी कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करते हैं। कुछ लोग गेम्स खेलते हैं, या फिर क्या कहते हैं जिम में जाते हैं, अनेक प्रकार के तरीके अपनाते हैं। लेकिन जब हम मनोरंजन कर रहे होते हैं तब तक हमारा तनाव बिल्कुल खत्म हो जाता है, बहुत रिलैक्स हम फील करते हैं। लेकिन जैसे ही मनोरंजन समाप्त होता है और फिर से हम अपनी पुनः उस स्थिति में आते हैं, समस्या सामने होती है, हमें फिर से तनाव होने लगता है। इसका मतलब एंटरटेनमेंट ने हमारे तनाव को सिर्फ पोस्टपोन किया, तनाव को खत्म नहीं किया। तो दीज आर नॉट द रियल रेमेडीज फॉर स्ट्रेस। अगर हमें अपने तनाव को कम करना है तो उसके लिए हमें ये समझना होगा कि उसका मूल कारण कहाँ है। तनाव का मूल कारण हमारे सोचने के तरीके में है। किसी भी परिस्थिति में हम जिस दिशा में सोचते हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं। हम किसी भी परिस्थिति में नेगेटिव भी सोच सकते हैं और पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। सोचना हमारे कंट्रोल में होता है। मानो आपके घर में मेहमान आते हैं और आप अपने सर्वेंट को, बेटी को, बहू को, जो भी आपके घर में है उसको आप कहते हैं चाय बनाकर ले आओ। वो चाय बनाकर लाती है और किसी कारण से नजदीक आते ही उसकी सारी चाय गिर जाती है और बर्तन भी टूटते हैं। अब हम दो तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, या तो हम नेगेटिव हैं तो गुस्सा करने लगेंगे, नाराज होंगे, तो मेहमान भी असहज होंगे, जो काम करने वाला है उसको भी भय होगा। अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम उस समय कुछ नहीं कहेंगे उनको, कोई बात नहीं जो हुआ, हम दूसरी चाय बना लेते हैं और ही सब कुछ समेटने में उनको मदद करते हैं। तो परिस्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन मैंने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया उस अनुसार या तो हम सहज उसे पार कर लेते हैं या फिर उसी में हम तनाव में आ जाते हैं। ऐसे ही मानो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में गलती होती है दो सबॉर्डिनेट से और अधिकारी उनको बुलाते हैं, दोनों को कहा जाता है लेकिन एक व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है, ठीक है ये मेरी गलती है, सॉरी कहता है और फिर ये भी कहता है कि ठीक है आगे से हम ध्यान रखेंगे कि हमसे ऐसी गलती दोबारा ना हो। लेकिन जो दूसरा सबॉर्डिनेट है वो गलती नहीं मानता है और दूसरों के ऊपर दोष देने लगता है और सिद्ध करता है ऐसा हुआ ना इसलिए ऐसा हुआ, अफसर भी नाराज और वो खुद भी तनाव में आ जाते हैं और वो तनाव लंबे समय तक चलता है। अब एक ही जैसी परिस्थिति दो लोगों के साथ है लेकिन दोनों उससे अलग अलग महसूस कर रहे हैं क्योंकि दोनों ने उसको अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड किया, अलग अलग तरह से सोचा। ऐसे ही एक माता एक माना दो परिवार थे और माना दो भाइयों के परिवार थे, उनकी स्थिति में बहुत अंतर था। जो पहला परिवार था वो बहुत अमीर था और दूसरे भाई का परिवार बहुत गरीब था। तो उनके बच्चे थे, जो गरीब भाई थे उनके तीन बच्चे थे, जो अमीर थे उनके पास अच्छी सुविधाएं थी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, सब कुछ उनको उपलब्ध था। लेकिन जो गरीब फैमिली थी उनके बच्चे जो थे वो निश्चित रूप से साधारण स्कूल में पढ़ रहे थे और उनके पास उतनी सुविधाएं भी नहीं थी। तो वो तीनों बच्चे सोचते थे, जो बड़ा बच्चा था वो अपने माता पिता को दोष देता था कि मेरे माँ बाप मेरी अच्छी तरह परवरिश नहीं कर सकते तो उन्होंने मुझे जन्म ही क्यों दिया है। माँ बाप को हमेशा दोष देना। जो दूसरा बच्चा था वो सोचता था हम गरीब हैं, मैं अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ता हूँ, मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, हीन भावना उसके अंदर आने लगी। और जो तीसरा था वो सोचता था हम गरीब हैं तो क्या हुआ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो उस उम्र में उसे ये समझ में आया कि मैं अच्छी तरह पढ़ूं, पढ़ लिख करके अपने जीवन में कुछ बन जाऊं। तो उसने पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाया और सचमुच वो एक बड़ा अफसर बना और एक कॉन्फ्रेंस में उसके कार्य के लिए उसको अवार्ड मिला और उसका अनुभव पूछा गया। तो उसने कहा मैं आज इस पद तक इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि मेरे माता पिता गरीब थे और जिस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए मैंने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाया, भले ही मैं बहुत ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, मैं कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। तो देखो तीनों बच्चों के सामने एक जैसी परिस्थिति है लेकिन तीनों के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग अलग, तो तीनों का जीवन भी बिल्कुल अलग अलग बना। तो कोई भी परिस्थिति अगर मुझे तनाव पैदा कर रही है तो मुझे ये सोचने की जरूरत है क्या मैं सही सोच रही हूँ या क्या हम अपने विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने विचारों को सकारात्मक कर सकते हैं और वो करना हमारे हाथ में है। मैं ये हाथ ऊपर करती हूँ या नीचे करती हूँ मेरे कंट्रोल में है, आसान है। लेकिन अपने विचारों को यदि मैं दिशा देना चाहती हूँ तो शायद ये उतना आसान नहीं है क्योंकि मन सूक्ष्म है, मन की गति बहुत तेज है, हम जैसा सोचना चाहते हैं शायद तुरंत हम वैसा नहीं सोच पाते, उसके लिए हमें अभ्यास की जरूरत होती है और वो अभ्यास ही मेडिटेशन है। तो आप राजयोग मेडिटेशन तो सीख रहे हैं और राजयोग मेडिटेशन में आपने समझा उसके दो चरण हैं। सबसे पहला चरण है आत्मचिंतन करना। जब हम योग अभ्यास करते हैं तो हम अंतर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी अर्थात हम स्वयं को देखते हैं, ज्यादातर हम दूसरों को देखते हैं, सामान्यतः हम बहिर्मुखी होते हैं यानी दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों को क्या करना चाहिए वो चिंतन ज्यादा चलता है। लेकिन जब हम अंतर्मुखी होते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो फिर हमें अपनी समस्या समझ में आती है, अपनी कमी समझ में आती है और उसको कैसे परिवर्तन करना है, कैसे समाधान करना है वो हम कर पाते हैं, वो संभव हो पाता है। और दूसरा राजयोग अभ्यास में हम परमात्मा के साथ संबंध का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा सर्वशक्तिवान है, शांति के सागर हैं, तो उससे मन को शांति मिलती है, शक्ति मिलती है, और उस शक्ति से जो हमारा मनोबल बढ़ता है, उससे हमें समस्या छोटी लगती है, परिस्थिति हमें खेल की तरह लगती है और उसे हम सहज पार कर जाते हैं। और हम देखते हैं जितने भी आध्यात्मिक महान पुरुष इस संसार में हुए हैं, उनके जीवन में कितनी ही कठिनाइयां आई हों, एक आम व्यक्ति से बहुत ज्यादा कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया होगा, लेकिन बहुत सहज रूप से। फिर चाहे वो हमारे क्राइस्ट थे, महात्मा बुद्ध थे, गुरु नानक देव जी थे, या आज के जमाने के महात्मा गांधी रहे, मदर टेरेसा रही, जो भी, तो उसका कारण कि उनको ईश्वरीय शक्तियों की प्राप्ति थी और उससे उनका मनोबल इतना ऊंचा था कि कभी भी परिस्थितियां उन्हें परिस्थितियों जैसी लगी नहीं। और फिर ये भी देखा जाता है कि जब हम राज्यों का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर में परिवर्तन आते हैं, जैसे तनाव की स्थिति में परिवर्तन आते हैं, लेकिन वो हानिकारक होते हैं। योग अभ्यास के समय जो परिवर्तन आते हैं वो लाभदायक है। योग की स्थिति में हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स एंड कैफेलिन्स बनते हैं, जो सारे सिस्टम को संतुलित करते हैं, यानी हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, हमारी हार्ट रेट कम होती है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, और इस तरह से हमारा तन भी स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है, और मन के साथ साथ तन भी स्वस्थ होता है। इसीलिए आज योग लोकप्रिय हो रहा है। आज हम देखते हैं लगभग सभी योग सिखाते हैं, या कोई बीमारियों के लिए डॉक्टर भी कहते हैं आपको रोज योग करना चाहिए। जितनी भी साइकोसोमेटिक बीमारियां, आज 70% बीमारियां साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं, तो उसके लिए डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि योग अभ्यास से ये परिवर्तन होने लगता है। और अपने यहाँ भी जो ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, वहां पर हृदय रोगियों पर ये अध्ययन किया गया है और इसके बहुत सकारात्मक परिणाम मिले हैं। 5,000 ऐसे मरीज जिनको डॉक्टर्स ने बाईपास एडवाइस किया था, एंजियोग्राफीज में उनके ब्लॉकेजेस थे 70% से लेकर 100% तक, उन्होंने यहाँ आकर के 7 दिन शिविर किया, उनको स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है वो सिखाया गया, एक्सरसाइज सिखाई गई, और साथ साथ जो डाइट में चेंजेस लाने हैं वो भी सिखाए गए। और अगर उन्होंने उस लाइफस्टाइल को फॉलो किया 6 महीने तक भी, तो सभी के ब्लॉकेजेस बिना बाईपास के नेचुरली ओपन हो गए। तो जरूर इसका वो प्रभाव शरीर पर होता है, तभी वो मरीज स्वस्थ हुए, अन्यथा कैसे स्वस्थ हो सकते थे। तो योग का प्रभाव हमारे शरीर पर भी आता है। फिर चाहे हमारी फैमिली लाइफ है, या हमारी पर्सनल लाइफ है, या हमारे वर्क प्लेस की लाइफ है, ये 3 बातें हमारे सामने होती हैं, रोल्स, रूटीन्स एंड रिलेशनशिप्स। हम सभी अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं। अगर हम महिला हैं तो हम परिवार को भी संभालते हैं, और यदि हम जॉब करते हैं तो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखते हैं, और यदि हम पुरुष हैं तो उस हिसाब से जो हमारे रोल्स हैं वो हम रोल्स प्ले करते हैं। तो हम सभी अपने अपने रोल्स प्ले कर रहे हैं, लेकिन ये रोल चेंज होते रहते हैं। अगर हम ऑफिस में हैं, 8 घंटा मैंने ऑफिस में एज ए अफसर काम किया या अधिकारी काम किया, तो वो 8 घंटा काम कराने के लिए हम ऑफिशियल बने रहे, लेकिन जैसे ही हम घर में लौटते हैं हमारा रोल चेंज हो जाता है, क्योंकि फैमिली में हम अफसर नहीं होते हैं। फैमिली में पिता है, या पत्नी है, या बेटी है, या बहू है, जो भी रोल होता है हमारा, बहुत डिफरेंट रोल्स होते हैं। तो परिवार वालों को हमसे अपनापन चाहिए, स्नेह चाहिए, लेकिन जो रोल मैंने ऑफिस में प्ले किया, अगर वैसा ही रोल मैं घर में आकर के प्ले करूंगी तो मेरे घर वाले उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो यहां ही कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। तो हम ऑफिस का तनाव घर में ला रहे हैं, यानी जहां हमारा जैसा रोल है वैसा रोल हम प्ले नहीं कर पा रहे, और मानो हम सबॉर्डिनेट हैं, अधिकारी नहीं हैं, कर्मचारी हैं, हमें लोगों का सुनना पड़ता है बहुत काम करते समय, उस समय हम कुछ नहीं कह सकते, उस गुस्से को पी लेते हैं। लेकिन जब घर लौटते हैं तो वही गुस्सा हम घर के सदस्यों पर निकालना शुरू करते हैं, अपना एंगर ट्रांसफर करते हैं, ऐसे कहेंगे। ऐसे कई बार होता है, अधिकारी ने गुस्सा किया हम पर, हमने कुछ वहां नहीं कहा, घर में आकर पत्नी पर गुस्सा निकाला, फिर पत्नी ने बच्चे पर निकाल दिया, क्योंकि उसके सामने बच्चा होता है, बच्चे पर निकाल सकती है। अब बच्चा क्या करे, तो वो बच्चे ने जाकर के गली में जो कुत्ता था उसको पत्थर मार दिया, अपना गुस्सा उस पर निकाल दिया। अब वो कुत्ता जो है गुस्से में दौड़ रहा था गली में, और वो अफसर जिसने गुस्सा किया था सबॉर्डिनेट के ऊपर, उसकी वाइफ ही वहां से पास हो रही थी, उसको जाकर काट लिया उसने। अब देखिए वो कर्म का परिणाम कैसे घूमा, वापस उस तक ही लौट कर आ गया। किसको सफर करना पड़ा, उस अफसर को ही फिर से सफर करना पड़ा। तो यहां हमें ये देखना होगा कि मेरा रोल जो है वो मैं वैसे ही प्ले कर रही हूं। स्पिरिचुअलिटी हमें बहुत अच्छा ये सिखाती है कि मैं वास्तव में जो कर रही हूं वो नहीं हूं, ये तो मेरा कार्य है जो संसार में करने के लिए मुझे मिला है, जस्ट मेरा एक रोल है, मैं एक आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा को ये शरीर मिला हुआ है। तो जब हम आत्मा समझकर अपने कर्म करते हैं तो हर रोल से डिटैच होना हमारे लिए आसान हो जाता है, और जहां हमारा जैसा रोल है वैसा रोल हम प्ले कर पाते हैं। ऐसे ही रूटीन्स, हम सब एक दिनचर्या में चलते हैं, हम सभी की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, 24 घंटे का हमारे लिए दिन है, और सभी के लिए वो दिन समान होता है, वो समय सभी को समान रूप से मिला हुआ है। तो अगर दिनचर्या व्यवस्थित चलती है, समय से सोना, समय से उठना, समय से कार्य करना, भोजन करना, तो हम तनाव महसूस नहीं करते। लेकिन आज की जीवन शैली कैसी है, सारे दिन मनुष्य व्यस्त रहते हैं काम में, और शाम को रिलैक्स होना चाहते हैं, चाहे काम से घर आते हैं चाहे घर में काम करते हैं, जो भी हो रिलैक्स होना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, टीवी देखते हैं। और टीवी में आप जो कुछ भी देखते हैं, कल भी हमारी एक स्पीकर बहन सुना रही थी, मानो आप न्यूज देखते हैं, तो मीडिया के लिए जो सबसे बुरी खबर है इस दुनिया की वो सबसे अच्छी खबर होती है। वो खबर आप टेलीविजन में देखते हैं तो क्या तनाव कम हो जाता है, या फिर आप स्पोर्ट्स देखते हैं तो आपकी मनपसंद टीम जीत रही है तो बहुत खुश, और अगर हार रही है तो उसके साथ आप भी ऊपर नीचे होते हैं, है ना। और मानो आप सीरियल्स देख रहे हैं तो क्या वो सीरियल स्वस्थ मनोरंजन देते हैं या हमारी भावनाओं को और दूषित करते हैं, और फिर टीवी के सामने बैठ गए, माना देर रात तक सोएंगे। अगर देर रात सोते हैं, कहा गया अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, लेट टू बेड लेट टू राइज परिणाम क्या होगा, सुबह का समय आपका अपने पास नहीं है, चला गया, उस समय आप व्यायाम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, अपने आप को समय देते हैं, वो समय आपके हाथ से चला गया। आप दिनचर्या कैसे शुरू होगी, हरी वरी एंड करी, जल्दबाजी में आपको सारे काम पूरे करने हैं, क्योंकि समय पर ऑफिस भेजना है या जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, और कई काम हम एक साथ करने शुरू कर देते हैं, एक भी काम हम सही ढंग से पूरा नहीं कर पाते हैं, दिन ही तनाव से शुरू होता है और फिर उसका प्रभाव पूरे दिन पर पड़ता है। सही तरीका क्या है, समय से उठें और जो काम पहले हाथ में लिया है उसे हम पूरा करें, फिर उसके बाद दूसरा काम हम हाथ में लें। तो जितना हमारी दिनचर्या व्यवस्थित चलती है उतना हम एक्यूरेट एक्टिव अलर्ट रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं और सक्सेसफुल भी रहते हैं, और तनाव भी हमें महसूस नहीं होता है। ऐसे ही संबंध, हम परिवार में या अपने कार्यस्थल पर संबंधों में ही होते हैं। और कहते हैं कि अगर संबंध मधुर हैं तो वो हमारे तनाव को कम करते हैं, क्योंकि संबंधों में हम अपना सुख दुख बांटते हैं और दुख बांटने से आधा हो जाता है। जिसको भी हम अपनी बात कहते हैं वो हमें सहयोग देते हैं या हमें हिम्मत देते हैं, हमें आशा बंधाते हैं, हमें कोई समाधान देते हैं, और इस तरह से हमें सहयोग मिलने से हमारा तनाव कम होता है। लेकिन कई बार संबंधों में कुछ नकारात्मक बातें आ जाती हैं जो तनाव को बढ़ाती हैं। अमेरिका में और विदेशों में ये देखा गया कि लोग बहुत पेट्स रखते हैं और वो पेट से वो बातें करते हैं। पेट माना कोई ना कोई पालतू जानवर उनके परिवारों में होता है, कुत्ता या बिल्ली वो पालते हैं। 90% घरों में वहां जरूर कोई पालतू जानवर होता है। तो ये देखा गया एक स्टडी में कि जो अपने पेट से बातें करते हैं उसको हार्ट की बीमारी बहुत कम होती है। तो ये जानने की कोशिश की गई स्टडी थी कि आप अपने पेट से क्यों बातें करते हैं, क्यों नहीं आप अपने पत्नी से, बच्चों से या दोस्तों से बात करते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि ये जानवर चुपचाप सुनते हैं, ये कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, हम सिर्फ सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। तो देखो अगर जानवर को भी सुनाया तो भी उसका सकारात्मक परिणाम मिला। तो भारत में तो पेट्स नहीं होते हैं ना। भारत में तो हम 90% घरों में पेट्स नहीं रखते हैं, केवल कुछ संपन्न घरों में ही शौक से लोग पेट्स पालते हैं। लेकिन अपने दिल की बात हम कहना चाहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो हमारे दिल की बातें ऐसी होती हैं हम किसी को भी नहीं कह सकते। किसी दूसरे मनुष्य को कहने में थोड़ा सा हमें ये संकोच होता है कि कहीं ये मेरी बात किसी दूसरे को कह तो नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में हम भगवान से अपने दिल की बातें कर सकते हैं। ही इज वेरी साइलेंट एंड फेथफुल लिसनर। आप राजयोग में यही सीख रहे हैं कि भगवान से हम कैसे अपने दिल की बात करें। तो हम अगर भगवान से करेंगे तो वो सिर्फ दिल हल्का ही नहीं करेगा, लेकिन उस समस्या को दूर करने की शक्ति भी हमें ईश्वर से मिल जाएगी। ऐसे ही संबंधों में बहुत अपेक्षाएं जब आ जाती हैं तो वो तनाव पैदा करती हैं। और समीप संबंधों में देखा गया हम बहुत अपेक्षा रखते हैं। जैसे एक पति सोचता है मेरी पत्नी है इसको मेरे लिए ये सब कुछ करना ही चाहिए, किया तो ठीक और नहीं किया तो नाराज हो जाते हैं या गुस्सा करते हैं। या पत्नी सोचती है पति के लिए इनकी ये सब जिम्मेवारी है, मेरे पति को ये सब करना ही चाहिए, उस अनुसार उन्होंने किया तो खुश, वो सारी इच्छाएं पूरी की तो खुश, मेरा बच्चा है मेरा कहना मानना ही चाहिए, अगर माना तो ठीक नहीं माना तो। तो हम ये समझे कि हमारी ये सब अपेक्षाएं पूरी हो जरूरी नहीं है। हरेक मनुष्य का व्यक्तित्व, विचार, भावनाएं अलग अलग होती हैं। जैसा हम सोचते हैं जरूरी नहीं है वैसा भी वो सोचते हैं। तो हम उनको समझने की कोशिश करें, उनकी स्थिति से अगर हम परिस्थिति को देखते हैं तो फिर हम उनको समझ पाते हैं और आपसी समझ से संबंधों में चलते हैं तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, तब तनाव नहीं होता है और हम एक दूसरे को समझकर सहज जीवन चलाते हैं। गुस्सा संबंधों में ही गुस्सा आता है और हम सब गुस्सा करते हैं। कल पूछ रहे थे आपसे भाई जी कि कौन ऐसा है आप में जो गुस्सा नहीं करता है, कम या ज्यादा गुस्सा हम सभी को आता है। और जब हम गुस्सा करते हैं तो हम ऐसे शब्द बोलते हैं जो हमें नहीं कहने चाहिए, हमेशा वो शब्द दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। इसलिए कहते हैं तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव नहीं भरता, कहने वाला भूल जाता है लेकिन सुनने वाला नहीं भूलता है। और स्थिति क्या होती है, संबंधों में दरार आने लगती है, प्रेम समाप्त होने लगता है, कई बार संबंध टूट तक जाते हैं। क्यों हम गुस्सा करते हैं? आप देख रहे हैं यहाँ कोई मेरी चीज को मेरी इच्छा के बिना यूज कर लेता है या मेरी सुकृति के बिना किसी ने कोई चीज ले ली तो हमें गुस्सा आता है, या कोई हमारा मजाक बनाता है, दूसरों के सामने अगर किसी ने मेरा मजाक बना दिया तो हमें गुस्सा आता है, किसी ने मेरी कमी निकाली वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती है, जो गलती मैंने नहीं की उस गलती के लिए मुझे कहा जाता है तो हम गुस्सा करते हैं, पहले ही हमारे पास बहुत काम है और किसी ने मुझे और काम करने को कह दिया तो हम गुस्सा करते हैं। जो काम हमने किया वो किसी ने बिगाड़ दिया। हम स्टेशन पर जाते हैं, पता चलता है कि ट्रेन 2 घंटा लेट है। कई बार ऐसे होता है कि सिर्फ एक चिड़चिड़ापन होता है, वो गुस्सा इस तरह का होता है, थोड़ा जोश आना, आवेश आना, चिढ़ना, ये भी गुस्से के ही रूप है, अंदर ही अंदर कुढ़ना। और एक होता है हम प्रत्यक्ष रूप से जोर जोर से चिल्लाकर गुस्सा करते हैं, बोलते हैं, चीजों को फेंकते हैं, तोड़ देते हैं, और उसका चरम रूप होता है लोग किसी को जान से भी मार देते हैं। ऐसे भी समाचार होते हैं अखबारों में कि गुस्से में आकर के लोग दूसरों की हत्या तक कर देते हैं। हाँ, तो सामान्य जीवन में हम ऐसा गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन चिढ़ना, कुढ़ना, आवेश में आना, जोश में आना, रौब जमाना और जोर जोर से चिल्लाना, चीजों को तोड़ना, फेंकना, ये सब हमारे गुस्से के इंटेंसिटी पर निर्भर करता है कि कितनी तीव्रता है गुस्से की, उस अनुसार हम वो करते हैं। ऐसे ही ट्रैफिक में कोई फंस जाए या बहुत ट्रैफिक है और किसी ने आपकी गाड़ी को थोड़ा लगा दिया, वो गाड़ी लगाने वाला तो निकल जाता है और हम गाड़ी में बैठे बैठे गुस्सा करते हैं कि उसने ऐसा किया। आप अपने दोस्तों के साथ कुछ कार्यक्रम बनाते हैं और वो दोस्त आपको बिना बताए चले जाते हैं, ये कुछ ऐसे कारण हैं। और भी बहुत सारे कारण होते हैं लेकिन कुछ सामान्य कारण जिसमें हम गुस्सा करते हैं। तो गुस्से के 4 प्रकार हैं। एक होता है जो पानी में लकीर के समान गुस्सा होता है। पानी पर लकीर कभी पड़ती नहीं है, आपने लकीर बनाई और तुरंत खत्म हो जाती है। तो जो माँ का बच्चों के प्रति गुस्सा होता है वो इस प्रकार का होता है ज्यादातर। अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाती है और बच्चे को कहती है, गुस्से में कह देती है, तो उससे भी ज्यादा प्यार माँ बच्चे को देती है, तो वो बच्चा भी भूल जाता है और माँ भी भूल जाती है, क्योंकि मन में वो शुभ भावना है, वो नकारात्मक भाव वाला गुस्सा नहीं होता है। तो वो पानी पर लकीर के समान होता है। जिनके प्रति शुभ भावना है लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने गुस्से को और हमने कह दिया, फिर हम उसे तुरंत रियलाइज करते हैं और खत्म कर देते हैं। दूसरा होता है रेत पर लकीर के समान। जो रेत पर लकीर होती है वो कुछ घंटों तक रहती है। तो समीप संबंधों का गुस्सा, जैसे पति पत्नी के बीच का, भाई बहन के बीच का, ऐसे ही दूसरे भी जो परिवार के संबंध होते हैं, सास बहू, कुछ भी, तो कुछ घंटों तक उसका प्रभाव रहता है। हम नाराज रहेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, लेकिन काम नहीं चलता है तो फिर एक ना एक अपनी गलती मान लेता है, झुक जाता है और कुछ घंटों में बात सामान्य हो जाती है, लेकिन कुछ घंटों तक उसका असर रहता है। फिर तीसरा होता है मिट्टी पर लकीर के समान। मिट्टी पर लकीर कुछ दिनों तक चलती है, खासकर हमारे मित्रों और रिश्तेदारों से जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसके कारण जो नाराजगी होती है वो दिनों तक चलती है, क्योंकि वो हमें रोज नहीं मिलते हैं। फिर जब वो किसी अवसर पर मिलेंगे, उत्सव पर मिलेंगे, तब हम उस गलत फहमी को दूर कर पाएंगे और फिर हमारी वो नाराजगी समाप्त होगी। ऐसे ही लाइन ऑन रॉक, चट्टान पर लकीर की तरह गुस्सा, माना किसी के प्रति यदि मेरे मन में दुश्मनी आ गई, वैर भाव आ गया, तो जीवन भर नहीं जाता है। ऐसा भी होता है, हालांकि इतना अधिक नहीं होता है, कम होता है, लेकिन फिर भी ये स्थिति भी आती है। कुछ कुछ तो परिवारों के परिवार पीढ़ियों तक उस वैर भाव को निभाते चले जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि अगर हम गुस्सा करते हैं तो किस तरह का गुस्सा है हमारा। फिर सबसे आम कारण जो गुस्से का है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप भी अच्छे अच्छे कारण बताएंगे, क्योंकि सभी अनुभवी हैं, लेकिन बहुत बड़ी सभा है इसलिए हम पूछ नहीं सकते इसको अभी। तो लोग हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करते हैं, सबसे आम कारण है। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं मान रहे, या वैसा नहीं कर रहे, या वैसा व्यवहार मुझे नहीं मिल रहा है, तो हमें गुस्सा आता है। तो यहाँ हमें वही समझना है जो पहले समझाया, कि हर व्यक्ति भिन्न है। इस ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, अपना अपना रोल है, सभी हमारे जैसे नहीं है। और यही इस सृष्टि की सुंदरता है, जो वैरायटी है वो इसकी सुंदरता है। तो हम दूसरों को भी समझ के चलें, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा हमारी बात मानेंगे। क्या हम हमेशा दूसरों की बात मानते हैं, या जिनसे हम अपेक्षा करते हैं इनको मेरी बात माननी चाहिए, वो 10 में से 9 बार मानते ही हैं। कभी एक बार ही ऐसा होता है जब वो मेरी बात नहीं मान रहे, क्योंकि वो समझते हैं वो राइट हैं आप गलत हैं। तो हो सकता है जरूर वो राइट होंगे, तो हम उनकी बात सुनते समझते हैं तो वो क्रोध की स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती है। फिर अपने लिए अगर हम सोचते हैं कि अगर हम हमेशा दूसरों की बात नहीं मानते तो दूसरे भी हमेशा हमारी बात नहीं मानेंगे ना? फिर दूसरों को कंट्रोल करने के लिए गुस्सा करते हैं, खासकर काम करवाना है ना? अगर वर्क प्लेस पर है तो हमें दूसरों से काम करवाना है, घर में है सर्वेंट आती है उससे काम करवाना है, जो भी, तो गुस्से से काम जरूर हो जाता है, क्योंकि जो सुनने वाला है उसे भय होता है और अपने भविष्य का भी भय होता है, तो वो चुप रहते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं बदल जाती हैं, तो वो कभी भी दिल से काम नहीं करेंगे। अगर आप गुस्से से काम करवाएंगे तो काम करने वाला कभी भी दिल से काम नहीं करेगा, मजबूरी से काम करेगा, और कहीं ना कहीं उसके मन में बदले की भावना होगी और वो अवसर ढूंढते रहते हैं। जैसे ही उनको अवसर मिलेगा वो आपके लिए समस्या पैदा जरूर करेंगे। तो परिणाम क्या हुआ, गुस्से से काम जरूर हो गया, तात्कालिक परिणाम बहुत अच्छा मिला, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। और मानो कोई मेरे से गुस्से से काम करवाता है तो मुझे पसंद आता है, जो बात जो व्यवहार मुझे पसंद नहीं है वही बात दूसरों के लिए भी सही है। तो हरेक सोचता है काम तो करना ही है, थोड़ा अच्छी तरह भी कह सकते थे, थोड़ा अच्छे शब्दों में भी इस बात को कह सकते थे। बच्चों के लिए भी हम ऐसे ही करते हैं, बच्चों को कंट्रोल करना है, बच्चे अगर सुनते नहीं हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो माता पिता क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं। और गुस्सा करते हैं तो जरूर बच्चे भी आपके भय के कारण शांत रहते हैं, उस समय कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन आप गुस्से में बहुत अच्छे शब्द बोलते हैं बच्चों को, हाँ ये नालायक है, ये बेवकूफ है, गधा है, कभी नहीं सुधरेगा। मानो गुस्से में हमें पता नहीं चलता हम क्या बोलते जा रहे हैं, और जब वो शब्द बच्चे सुनते हैं तो वो कई बार बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, भोले होते हैं, वो उन शब्दों को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। आपको खुश करने के लिए वो किताब खोलकर बैठा है लेकिन पढ़ नहीं रहा है, जो पिता ने कहा या माँ ने कहा वो चिंतन उसके मन में, मेरे माँ ने मुझे ऐसा कहा। अब आप खुश हो रहे हैं लेकिन वो 2 घंटे किताब खोल करके भी कुछ नहीं पढ़े। सही तरीका क्या है, अगर आप बच्चों को समझाना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए या पढ़ना चाहिए, तो समय दीजिए, समय दें। और आज के बच्चे कारण जानना चाहते हैं कि वो ऐसा क्यों करें ना, आप उनको कन्विंस कर पाएंगे तो वो जरूर करेंगे, और प्रेम से समझाइए। उसके लिए हमें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, कई बार आप जो चाहते हैं वो उनको एक बार में समझ में नहीं आएगा, हो सकता है आपको 2 बार समझाना पड़े, 3 बार समझाना पड़े, 4 बार समझाना पड़े, इतना धैर्य हमें रखना पड़ेगा, फिर वो अवश्य वही करेंगे जो आप चाहते हैं। पर यदि हम धैर्य नहीं रख पाते और गुस्सा करते हैं तो बच्चे भी आपसे गुस्सा करना सीख लेते हैं, और थोड़ा बड़े होते ही वो आपका सामना करने लगते हैं, और फिर आप समझते हैं ये आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को नहीं समझ सकते। सिखाया किसने? जैसे हम कल बात कर रहे थे कि अपने आचरण से हम ही बच्चों को सिखाते हैं, हमने ही उन्हें सिखाया। और जब अन्याय होता है तभी भी हमें गुस्सा आता है। तो अगर अन्याय हो रहा है तो हम जरूर उसके बारे में बातचीत करें। गुस्सा करने से कभी अन्याय दूर नहीं होगा। हो सकता है कि हमें किसी तीसरे को भी उसमें शामिल करना पड़े तो भले शामिल करें। कभी कोई झूठ बोलता है तो भी गुस्सा आता है। तो अगर किसी ने झूठ बोला, मानो खासकर हमारे समीप संबंधों में जिन पर हम बहुत विश्वास करते हैं और वही हमें धोखा देते हैं, तो हम उसे सहन नहीं कर पाते हैं कि इसने मुझे धोखा दिया, इस पर मुझे इतना विश्वास था, इसने मुझसे झूठ बोला। कई बार बच्चे भी ऐसा करते हैं, आपको कहते हैं कॉलेज जा रहे हैं लेकिन कॉलेज नहीं जाते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं या फिल्म देखने चले जाते हैं और आपसे आकर झूठ बोलते हैं। आपको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं से पता तो चल ही जाता है कि बच्चे ने झूठ बोला, लेकिन आपके सामने कह रहा है मैं कॉलेज गया, तो वो क्यों हमसे झूठ बोल रहा है? कई बार हम ही जिम्मेवार होते हैं। मानो बच्चे से कुछ वैल्यूएबल चीज टूट जाती है तो वो अपनी दादी को जाकर बताएगा, दादी मेरे से ये टूट गया, लेकिन माँ को साफ मना कर देगा। क्यों? पता है कि माँ मारेगी या डांटेगी, उससे उसको डर है, लेकिन पता है कि दादी कुछ नहीं कहेगी और ही प्यार से मेरी बात को संभालेगी और माँ को भी नहीं बताएगी। तो हमारा अपना व्यवहार उनको झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है। फिर आप सोचेंगे तो क्या हम बच्चों को वो करने दें? अगर आप छुट्टी देंगे तो वो जरूर आपको सच बता देंगे कि हाँ मैं कॉलेज नहीं लेकिन मुझे दोस्तों के साथ जाना है या फिल्म देखने जाना है। लेकिन नहीं, हम भले उनको समझाएं, उनका हम मार्गदर्शन करें, लेकिन सही तरीके से अगर हम मार्गदर्शन करते हैं, बच्चों को हमसे कोई भय नहीं होता है तो वो हमें सच बोलेंगे। अगर हमने भय पैदा कर रखा है तो फिर कभी भी वो हमसे सच नहीं बोलेंगे। ऐसे ही किसी ने मेरा अपमान किया, कभी कभी होता है कोई हमसे बुरा व्यवहार करते हैं, दूसरों के सामने हमारी इंसल्ट कर देते हैं, हमारी निंदा करते हैं, तो हमें पसंद नहीं आता है, क्योंकि मनुष्य को अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है, निंदा सुनना पसंद नहीं होता है, और वो व्यक्ति हमें दुश्मन जैसा लगता है। पर आध्यात्मिकता हमें सिखाती है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। निंदा करने वाला हमारा मित्र हो सकता है? हो सकता है, क्या कहेंगे, हाँ या ना? जो समझते हैं हो सकता है वो हाथ उठाइए। अच्छा, सोच सोच के उठा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो सचमुच निंदा करने वाला हमारा मित्र है, क्योंकि वो हमें हमारी कमी बताता है, और वो कमी अगर मेरे अंदर है, हम देखते हैं ये जो बात कह रहे हैं वो सचमुच कमी मेरे अंदर है और उसे हम दूर करने की कोशिश करते हैं तो जीवन में हमारी प्रगति होती है। लेकिन कई बार वो कमी हमारे अंदर नहीं होती है, दूसरों को गलत फहमी होती है, ये भी होता है। सचमुच ऐसी स्थिति होती है कि वो कमी मेरे अंदर नहीं है लेकिन दूसरे को गलत फहमी हो गई या उसने किसी से सुन लिया इसलिए मेरे बारे में वो गलत बातें कर रहे हैं, तो हम उनको समझाने की कोशिश करें।